ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व।
नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति लोकतंत्र का महापर्व में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है और हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि भारतीय लोकतंत्र में किस तरह जनता जनार्दन की आस्था लगातार बढ़ी है और वोटर टर्नआउट का बढ़ना इसके प्रभाव को दर्शाता है। देश में प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय क्षेत्र के साथ ही अरुणाचल एवं सिक्किम के 92 विधानसभा क्षेत्र में हुए। सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रथम चरण में चुनाव आयोग ने 350 से अधिक पर्यवेक्षकों को उतारा था। इसमें 127 सामान्य पर्यवेक्षक, 67 पुलिस पर्यवेक्षक और 167 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विशेष रूप से गर्मी से निपटने के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई प्रलोभन न दिया जाए, बलों का इष्टतम उपयोग किया जाए और कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी को निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सम्मेलन हो रहे हैं। चुनाव आयोग देश में लोकसभा आम चुनाव को उत्सव बनाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर लगातार जोर देता रहा है। इसके बावजूद लगभग 29 करोड़ 70 लाख पात मतदाताओं ने 2019 में लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया। यह मतदान करने को लेकर मतदाताओं की समस्या को भी रेखांकित करता है। चुनाव आयोग ने इसके लिए सक्रिय उपायों और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता महसूस की है। चुनाव आयोग नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल करने के साथ ही मतदाताओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर कर एक जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 18वीं लोकसभा के गठन में अधिक से अधिक जनभागीदारी, या यूं कहें कि सरकार में नागरिकों की अधिक सहभागिता हो, इसलिए चुनाव आयोग ने पहली बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से देश के चुनिंदा निगम आयुक्त और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ मतदान में कम सहभागिता पर सम्मेलन आयोजित किया। मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाई जाए, उसे ध्यान में रखकर 266 शहरी और ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों की टर्नआउट अमल योजना तैयार की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पूर्व आयोजित सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने निगम आयुक्तों और जिला चुनाव अधिकारियों को एक ऐसा आंदोलन सृजित करने का निर्देश दिया जहां मतदाता चुनाव में भाग लेने के लिए स्वयं प्रेरित हों।
लोकसभा चुनाव 2019 में जिन संसदीय सीटों पर मतदान का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से कम रहा था, उनसे संसदीय सीट से जुड़े प्रमुख शहरों के निगम आयुक्त और बिहार व उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिला चुनाव अधिकारियों ने चिन्हित शहरी और ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं के चुनाव से जुड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक रास्ता तैयार करने को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि लोकसभा के 2019 के आम चुनावों में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर व झारखंड में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 67.40 से कम रहा था। 2019 में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान वाले इन राज्यों के 50 ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों में से 40 संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार से रहे हैं। यूपी में फूलपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 48.7%, जबकि बिहार में नालंदा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 48.79% मतदान हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कम मतदान प्रतिशत वाले कुल 266 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें 215 ग्रामीण और 51 शहरी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित सभी निगम आयुक्तों, जिला चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लक्षित तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने के तरीकों का पता लगाने के साथ ही मतदान केंद्रों पर कतार प्रबंधन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शेल्टर पार्किंग जैसी सुविधा प्रदान करने, लक्षित पहुंच एवं जानकारी, मतदान केंद्रों पर लोग आए इसके लिए RWH से बातचीत, स्थानीय आइकन और युवा प्रभावशाली लोगों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों की भागीदारी की त्रिआयामी रणनीति पर जोर दिया गया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बढ़ी हुई भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन के लिए बूथवार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करने के निर्देश देने के साथ ही कहा कि सभी के लिए एक ही तरह की रणनीति वाले दृष्टिकोण से परिणाम नहीं मिलेंगे। व्यवस्था ऐसी करें कि मतदाताओं में लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लेने का गौरव पैदा हो और लोग मतदान करने के लिए स्वयं प्रेरित हों। इसी दिशा में भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में लगातार जागरूकता पैदा कर रहे हैं। परसों यानी 24 अप्रैल को उनका जन्मदिन भी है और उन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में जब वे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन हैं, तो उनके व्यक्तित्व पर एक नज़र डालते हैं। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के साथ मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में एक नई पारी शुरू की। यह सहयोग आगामी चुनावों, विशेष रूप से आम चुनाव 2024 में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं पर तेंदुलकर के गहरे प्रभाव का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवा, शहरी आबादी और चुनावी प्रक्रिया के बीच की खाई पाटना है, जिससे शहरी और युवा उदासीनता की चुनौतियों का समाधान हो सके।
भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर विश्व क्रिकेट के एक चमकते सितारे रहे हैं। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर और मां का नाम रजनी पाटिल है। उनके बड़े भाई अजित तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। मनोनीत राज्यसभा सांसद रह चुके सचिन तेंदुलकर को लोग प्यार से मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान जैसे शब्दों से भी बुलाते हैं। खेल के साथ साथ सचिन तेंदुलकर स्वच्छ भारत पहल सहित अन्य सामाजिक कार्यों में भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। स्वच्छ भारत पहल से जुड़ने के लिए और अधिक लोगों को आमंत्रित कर उन्होंने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया था। इसी कड़ी में अब वह चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए हाल ही में नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अगले 3 वर्ष के लिए महान क्रिकेटर तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
सचिन तेंदुलकर न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी एक विरासत है जो उनके क्रिकेट कौशल से कहीं अधिक है। उनका शानदार करियर उत्कृष्टता, टीम वर्क और सफलता के अथक प्रयास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनका प्रभाव खेलों से परे है, जिससे वे भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग करने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक आदर्श विकल्प बन गए हैं। इस सहयोग में कई गतिविधियां शामिल हैं। इनमें तेंदुलकर द्वारा विभिन्न टीवी टॉक शो कार्यक्रम और डिजिटल अभियानों आदि में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है, जिसका उद्देश्य मतदान के महत्व और राष्ट्र की नियति तय करने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत निर्वाचन आयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध भारतीयों के साथ स्वयं को जोड़ता रहा है। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नामित किया गया है। आयोग ने 2022 में प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान महेंद्र सिंह धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन थे। इस बार मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ते जाने की अद्भुत मिसाल रहे हैं।
सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते रहे हैं। अपने द्वारा तय लक्ष्य को पार करते हुए आगे बढ़ते जाने की अद्भुत कहानी के मिसाल रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा बड़ी अद्भुत रही, क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा से ज्यादा अनुस्पर्धा का रास्ता अपनाया। अनुस्पर्धा का मतलब स्वयं से स्पर्धा है। तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि खेलते समय वे केवल उसी गेंद पर विचार करते थे जो सामने होती थी, पिछली और अगली गेंदों के बारे में नहीं सोचते थे। अपनी एकाग्रता के बारे में सचिन ने एक बार कहा था कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे से भी बहुत सारी उम्मीदें होती थीं। इस दौरान कई सारे मुश्किल और अच्छे क्षण आए, लेकिन लोगों की उम्मीदें हमेशा रहती थी और वो समय के साथ बढ़ती ही गई। ऐसे में मेरे लिए एक समाधान ढूंढना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से उम्मीदें रखूंगा और खुद लक्ष्य तय करूंगा। अगर मैं खुद लक्ष्य तय कर रहा हूं और उसे हासिल कर पा रहा हूं, तो जरूर कुछ न कुछ अच्छी चीज देश के लिए कर पा रहा हूं। और उस लक्ष्य को मैं हमेशा हासिल करने की कोशिश करता था। मेरा फोकस रहता था गेंद पर और लक्ष्य अपने आप धीरे धीरे हासिल होते गए। सचिन ने कहा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि सोच बहुत जरूरी है।
सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर बेमिसाल रहा है। क्रिकेट के इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर 24 साल तक खेल की दुनिया में सक्रिय रहने के बाद 2013 में रिटायर हो गए। 16 साल की उम्र में पहले टेस्ट से लेकर उनके 100वें अंतर्राष्ट्रीय शतक तक उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में कई कीर्तिमान स्थापित किए। स्कूली दिनों में ही उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आने लगी थी। जल्द ही वह भारतीय बल्लेबाजी की बुनियाद बन गए और क्रिकेट को समर्पित देश के दीवाने लोग उनके खेल को गौर से देखने लगे। किसी क्रिकेटर से कभी इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं की गईं जितनी उम्मीदें सचिन तेंदुलकर से रहीं। यही कारण रहा कि उन्होंने लंबे समय तक और इतनी बढ़िया शैली में प्रदर्शन किया। इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी होने के बावजूद सचिन तेंदुलकर हमेशा एक विनम्र इंसान बने रहे और परिवार एवं देश के प्रति हमेशा समर्पित रहे। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने सचिन तेंदुलकर को सबसे प्रभावी स्वच्छता दूत का पुरस्कार प्रदान किया था। लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर उनका कहना है, भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र के लिए युवा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल मैचों के दौरान जो दिल टीम इंडिया के लिए एक स्वर में इंडिया इंडिया के जयकार के साथ धड़कते हैं, वे हमारे अनमोल लोकतंत्र को आगे ले जाने के लिए भी उसी तरह धड़केंगे। ऐसा करने का एक सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका नियमित रूप से अपना वोट डालना है। जब देश के कोने कोने से युवा चुनावी लोकतंत्र में बड़ी संख्या में भाग लेंगे तो हम अपने देश के लिए एक समृद्ध भविष्य देखेंगे।
17वीं लोकसभा के मुकाबले 22% बढ़ गए हैं पहली बार के मतदाता। इस लोकसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 1,84,00,000 से अधिक है जो पहली बार मतदान करेंगे। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले इस बार पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या में 22% से अधिक वृद्धि हुई है। श्रोताओं, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ पंचायतें हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उनके स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही था। उन्होंने इस संकल्प को बार बार दोहराया कि भारत की पहचान भारत के गांव से है। उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना दी और ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राष्ट्र को प्रेरित किया। पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। देश 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाएगा, जो ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का होता है एक महत्वपूर्ण अवसर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, आत्मनिर्भरता से मेरा अर्थ है ऐसे गांव जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो। लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी सीमाओं में हम बंध जाएं। बापू के विचार बहुत स्पष्ट थे, यानी हमें नए नए अवसरों को, नई संभावनाओं को तलाशते हुए अपने गांवों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, यह बहुत आवश्यक हो गया है।
भारत में यह विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव के भी आधार हैं। इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस का यह दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कार्यों को देखने, समझने और उनकी सराहना का भी दिन है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एक बात बार बार कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है। ऐसे में ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है। हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा ताकतवर केंद्र है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, संगमूलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। ऐसे में आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की और आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी। श्रोताओं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। अगले सप्ताह भी लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। इसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।